महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए विचार कर रहे हैं। साधु अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का प्रयास करता है और एक सद्गृहस्थ भी घर गृहस्थी में रहकर अपने जीवन को बेहतर और अच्छे ढंग से जीने के लिए पुरुषार्थ करता है, करना चाहिए। जीवन को जीने का बेहतर ढंग क्या है? कोई भी कह देगा जितना जीवन निराकुलता में बीते उतना बेहतर, उतना अच्छा, और जितनी आकुलताएं घेर लेवे उतना ही जीवन जीना मुश्किल। जीवन में आसानी अगर आती है तो निराकुलता में आती है। छेडाला में दौलत राम जी लिखते हैं, आत्म को सुख है हित, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। अगर हम अपने जीवन में वास्तव में सुख चाहते हैं, जीवन को शांति से जीना चाहते हैं, तो आकुलताएं जितनी कम कर सकें उतना पुरुषार्थ आकुलता कम करने का रहता है। सुबह से शाम तक अगर हम देखें और कि हमारे जीवन में राग है, द्वेष है, मोह है, ये तीन बहुत प्रसिद्ध सी चीजें हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत स्पष्ट से अपन को नहीं मालूम पड़ते, कहने में आसान मालूम पड़ता है। पर ये जो मेरे तेरे का भाव है वो क्या है? ये अपने और पराये का जो भाव है जो सुबह से शाम तक चलता रहता, ये क्या है? यही तो राग द्वेष है, और मेरी इसमें जो आसक्ति है, मेरी जो इसमें गाफिलता है, अज्ञानता है, वो मेरा मोह है। मैं इसे छोड़ नहीं पाता हूं, जान तो जाता हूं कि ये ठीक नहीं है। अपने प्राय तेरे मेरे का भेदभाव, इसमें तो मुझे ही आकुलता होने वाली है, ऐसा जान भी लेता हूं, लेकिन भीतर की आसक्ति जो है वो जाती नहीं है, वो मोह जाता नहीं है, जिससे कि प्रेरित होकर के ये राग द्वेष के परिणाम निरंतर चलते रहते। एक साधु के जीवन में मोह घट जाने से राग द्वेष की परिणति कमती हो जाती है, लेकिन एक गृहस्थ के तो मोह की प्रबलता के कारण राग द्वेष की प्रवृत्ति घनी ही देखने में आती है। सो क्या करे वो सद्गृहस्थ, अपने मोह को घटाने और राग द्वेष को कम करने के लिए पुरुषार्थ करे, यही कर सकता है। और मोह घटता है भगवान जिनेंद्र के पंच परमेश्वरी के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से। अपन ने पिछले दिनों ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझी है कि अरहंते सो भक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति जो हमारी शुभ भक्ति है वो हमारे मोह को घटाकर हमारी दृष्टि को समीचीन बनाएगी, और जिसकी दृष्टि जितनी समीचीन है उसके जीवन में राग द्वेष उतने ही कम। या ये कहें कि राग द्वेष घटावने के श्रद्धान का नाम ही दृष्टि की निर्मलता और सम्यक दर्शन। तो अगर ऐसा पुरुषार्थ हम करें कि हमारा मोह भी घटे और साथ में राग द्वेष घटे, निराकुलता बढ़ती चली जाए, तो आत्म सुख हम इस जीवन में प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, मेरा अपना सोच, मेरे अपने विचार। अगर इस पे हम सोचें कि हाँ सचमुच मेरे अपने सोच और विचार के अनुसार ही तो मैं अपने कर्म करता रहता हूं, मेरा सोच सही है, समीचीन है, तो मेरे अपने कर्म भी समीचीन हो जाते हैं। और अगर एक विचार जिसके असमीचीन है, जिसे हे उपादेय का विवेक नहीं है, वो कैसे भी कर्म क्यों ना करे, वे कर्म उसके जीवन को निराकुलता नहीं दे पाते। वे कर्म थोड़े से सुख सुविधा के लिए साता का आश्रय तो करा देते हैं, लेकिन वो जो निराकुलता मेरी स्वाभाविक अवस्था है उस तक नहीं ले जाते वे कर्म, चाहे वे कर्म शुभ अशुभ किसी भी प्रकार के क्यों ना हो। अगर मेरे विचारों में समीचीनता नहीं है तब तो विचारों की समीचीनता बहुत जरूरी है, और अपने विचार ही तो गड़बड़ा जाते हैं। हम अपने विचारों को व्यवस्थित करें, सुबह से शाम तक जो हमारे विचार निरंतर चलते रहते हैं उन पर हमारी ग्रिप नहीं है, बल्कि हमारे तो ऊपर विचारों की ग्रिप है, हम उसके अनुसार ही अपने जीवन के कर्मों को प्रवर्तित करते रहते हैं। हम थोड़ी सी चेतना को जागृत करें, सत्संगति के माध्यम से जागृत करें, स्वाध्याय और धर्म ध्यान के माध्यम से जागृत करें, जिससे कि हमारे विचारों में समीचीनता आए, हमारी दृष्टि में आए, जिससे कि हमारा राग द्वेष का जो प्रपंच वो घटे। एक प्रयोग किया गया कैसे विचारों का प्रभाव पड़ता। 20 लोगों को इकट्ठा किया गया, ऐसे 20 लोग जो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, अपरिचित हैं, कोई उनका आपस में मिलना जुलना परिचय नहीं हुआ, और उनको एक एक कागज और कलम दे दी जाती है, एक बार एक नजर भर वो एक दूसरे को देख लेते हैं, और फिर कहा जाता है कि अब अपने इस पर लिखो। सबके नंबर डले हुए थे 1 से लेकर के 20 नंबर तक, सो अपने अपने कागज पर लिखो कि कौन अच्छा और कौन बुरा। तो जिसके जो समझ में आया, 200 लोगों ने बाकी 19 के बारे में भले बुरे का गणित बिठाला। मजे की जो बात हुई अंत में वो महत्वपूर्ण वही है, एक व्यक्ति ने भले लोगों की लिस्ट में एक से लेकर के 19 तक लिखे, एकमात्र अपना नाम बुरे लोगों की लिस्ट में लिखा। और एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपना नाम भले लोगों में लिखा, शेष 19 बुरे लोगों में लिखे। और रिजल्ट देखिएगा, जिस व्यक्ति ने अपना नाम भर बुरे में लिखा, बाकी सबका भले में लिखा, आप आश्चर्य करेंगे कि शेष 19 लोगों ने उसका नाम भले लोगों में लिखा। और जिस व्यक्ति ने सबका नाम बुरे लोगों में लिखा था, अपना भर भले लोगों में, उसका नाम सबने बुरे लोगों में लिखा, जबकि एक दूसरे से कोई परिचित नहीं था। कितना प्रभाव पड़ता हमारे विचारों का। और ये हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा सोचते हैं, उसका इंप्रेशन एक दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता। मैं आपके बारे में अच्छा सोचूं, आपके भीतर भी मेरे बारे में अच्छा विचार आए बिना नहीं रहेगा। और अगर मैं आपके बारे में खोटा सोचूं और आपके साथ ही रहना है, तो आपके मन में भी मेरे प्रति खोट आए बिना नहीं रहेगी। इतना प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों का। और राग देश इसी तरह से बढ़ता रहता है। घर गृहस्थी में कोई व्यक्ति नहीं भी चाहे राग देश करना, शांति से रहना चाहे, तब भी वातावरण जो राग देश का है वो उसे प्रभावित किए बिना नहीं रहता। उपादान की जिसकी योग्यता है वो ही बाह्य निमित्त मिलने पर प्रभावित नहीं होता, वरना तो अधिकांश हम और आप और उसी में ढलक जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आखिरी में यही बात आती है कि अपने उपादान को जागृत करें, जिससे कि ये बाह्य निमित्त हमें प्रभावित ना करें। अपनी अंतरंग निराकुलता की तरफ हमारा ध्यान रहे। बाहर आकुलता के चाहे जो उपाय किए जाएं, लेकिन मैं उससे अपने मन को आकुलित ना करूं। इतना पुरुषार्थ अगर जीवन में हम रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे एकदम कहने से थोड़ी हो जाएगा कि हमने कहा निराकुलता सो आ गई निराकुलता। भाई अभ्यास करना पड़ेगा। जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी हमारे भीतर दृढ़ता भी आती चली जाएगी। उस दृढ़ता के चलते फिर हम अपनी उस निराकुल अवस्था को भी अनुभव कर सकते, थोड़ी देर, घड़ी घंटा सही। और उसी के लिए तो अपन ने कल बैठ करके ये बात की थी कि भाई अब तो तीसरी प्रतिमा ले लेते हैं सुबह दोपहर शाम, और जरा निराकुलता की साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, समता का कैसा स्वाद है उसका हम भी तो लेके देखें। तब गृहस्थ जीवन में भी सामायिक के द्वारा निराकुलता का अभ्यास करने का प्रयत्न करता है एक सदगृहस्थ, वरना तो विषमता में ही, आकुलता में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता। आप देख लो, कभी किसी को 24 घंटे में ऐसा लगे कि अब कछु काम नहीं है हमें घर गृहस्थी का, लगे हुए सुबह से शाम तक। अगर घंटा भर को मंदिर ने आवे तो वो घंटा भर भी वही घर गृहस्थी के काम में निकल जाए, उसी राग द्वेष में और मोह में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई ऐसा हो कि अब 23 घंटे में से एक घंटे बिल्कुल फुर्सत वाला है जिसमें राग द्वेष करने का कोई काम ही नहीं है। तो वहां आप रहेंगे वहां पर राग द्वेष और मोह हुए बिना नहीं रहेगा। ये तो अपन उसमें से बचा लेते हैं जितना वही सार्थक हो जाता। तो अब हम एक घंटे सुबह दोपहर शाम निकालते हैं जिसमें हम समता का अभ्यास करते, अपनी उस निराकुलता, उस आत्म सुख की जो वास्तविक अवस्था है उसका स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के हमारे अपने परिणाम, जो हमारे अपने द्वारा भी नहीं संभलते, भैया बहुत मुश्किल है अपने ही परिणाम संभालना, अपने लिए मुश्किल हो जाता अगर ये क्रियाएं नहीं करें तो। अपन नहीं संभाल पाएंगे, दूसरा तो संभाल ही नहीं सकता। एक और छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। एक राजा साहब एक घूमने निकलते थे तो चंदन वाले की दुकान थी, चंदन बेचता था वो, उसके सामने से निकलते तो उनको बड़ा मन में ऐसा आता कि ये खराब आदमी है और इसको तो फांसी दे देना चाहिए। एक दिन अपने मंत्री जी से कहा कि भाई तुम रास्ता बदल लो यहां से निकलने का, ये अच्छा भला आदमी है, चंदन बेचता है, मेरे ही गांव का, शहर का है, और मेरे मन में इसके प्रति ऐसी खोटे भाव आते कि इसको फांसी लगा दी जाए। मंत्री जी ने कहा कि राजन धैर्य रखो, कोई ना कोई वजह तो होगी, ऐसा आपके मन में विचार आता है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। असल में बात ये हुई थी कि राजा साहब हो गए थे अस्वस्थ, तो वैद्य जी वगैरह के कहने से उनने ये घूमने का शुरू किया था, और वो अस्वस्थता की खबर सब में थी। तो वो चंदन बेचने वाला था, उसको भी अस्वस्थता की खबर मिली थी। मंत्री जी ने खोजबीन करी कि बात क्या है, तो चंदन वाले ने अपने मित्रों के बीच ये चर्चा की होगी। वो मंत्री जी ने पता कर ली, क्या चर्चा की थी, सुना है कि राजा अस्वस्थ हैं, अब क्या पता कितना जीवन शेष रहा है, और राजा साहब अगर नहीं रहेंगे तो उनका दाह संस्कार तो चंदन की लकड़ी से होगा। सो बहुत सारी मंगा मंगा के रख ली थी, और बाद में मालूम पड़ा कि राजा तो स्वस्थ हो गए। रोज रोज राजा के बारे में यही विकल्प आता था कि अगर राजा का जीवन समाप्त हो जाता तो सारा चंदन मेरा बिक जाता, अब चंदन स्टॉक पड़ा हुआ है। ये जो राजा के बारे में अनकॉन्सियस में अचेतन अवचेतन मन में जो विचार पड़ा हुआ था, वो राजा को भी दुर्भावना उत्पन्न करने में कारण बनता था, और उसके सामने से निकलते ही उनके मन में आता था कि इसको फांसी दे दी जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए। इतना प्रभाव हमारे परस्पर के विचारों का पड़ता है। ये राग द्वेष की संतति ऐसे ही चलती है। इसको घटाने के लिए कह रहे कि शांति से सुबह दोपहर शाम थोड़ा अवसर तो निकालो जीवन में, नहीं तो पूरा जीवन ही इसी में व्यतीत हो जाए। तो पिछले दिनों हमने इस निराकुलता की और समता की साधना के लिए घर गृहस्थी में रह करके भी कैसे और अभ्यास किया जाता, इस पर विचार किया था, और मन में विचार आया कि इतने से क्या होगा, थोड़ा इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। तो कैसे करें, कहते पर्व दिनेशु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्ति मनि गुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणधि परः प्रोषधानसनम्। अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। महीने में, हर महीने में चार दिन पर्व के आते हैं, मासे मासे पर्व दिनेशु चतुष्वपि, दो अष्टमी हैं, दो चतुर्दशी हैं, ये चार शाश्वत पर्व के दिन हैं जो हर माह में आते हैं। इनमें हम प्रोषध का नियम ले करके और उपवास करके अपनी उस निराकुलता की साधना को बढ़ाएं। पर्व किसे कहते भैया, बुंदेलखंड में पर्व के दिन को क्या कहते, आज पावन को दिन है, हैं? त्योहार कहते अपन, पावन का दिन कहते। तो वास्तव में वो जो पर्व है वो पवित्र दिन का नाम ही पर्व है, और पवित्रता कब आती है, जितना राग द्वेष घटता है उतनी पवित्रता उतनी निर्मलता आती है। या ये कहो कि राग द्वेष से रहत अपने उस वीतराग स्वभाव का अनुभव करने का दिन है, वो पर्व का दिन है। जिस दिन भी हमारे राग द्वेष घटते हैं, वीतरागता का हमें अनुभव करने का आनंद मिलता है, वही हमारा दिन पर्व का है। आचार्य महाराज तो कहते कि सब दिन पर्व के हो जाएं अगर हमारे भीतर वीतरागता का अनुभव हो जाए, सब दिन पर्व के। ऐसे उस पर्व के दिन में क्या करना, प्रोषध का नियम निर्वाह करते हुए उपवास करना। प्रोषध और उपवास दो शब्द समझने के हैं ताकि हम इस अभ्यास को कर सकें। प्रोषध का मतलब होता सकृत भुक्ति, एक बार भोजन करना, ये कहलाता प्रोषध, जिसको अपन लोग एक आसन कहते हैं। उसका नाम टेक्निकल जो जैन दर्शन का है वो प्रोषध है। वो प्रोषधेन सहिता उपवासा प्रोषधोपवासा, जो उपवास प्रोषध के साथ किया जाए, या जिस उपवास के आजू बाजू दोनों तरफ प्रोषध हो, अर्थात जिसमें पहले एक आसन किया फिर उपवास और फिर एक आसन, ऐसा नहीं कि अब कल उपवास है सो आसन जाको खूब ठूस ठूस के खा लो सो कल को उपवास अच्छे हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए रखा हुआ है कि प्रोशन एक दिन पहले तो एक आसना करी है फिर उपवास किया और फिर जाकर के एक आसना करेंगे, कोई आकुलता नहीं है। क्योंकि यह जो भूख प्यास की आकुलता है वो भी तो एक जन्मजात आकुलता है, पता नहीं लगता अपन को, यह भी आकुलता, यह भी निराकुलता में बाधक है ये चीज। तो उस भूख प्यास की बाधा को सहन करके और अपनी निराकुलता को बनाए रखना, इसी भूख प्यास के पीछे ही जीव जो है वो अपने संसार के सारे प्रपंच में फंसा हुआ है। सुबह से शाम तक पशुओं को देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो सिवाय अब दूसरी संज्ञा के और कुछ दिखाई पड़ता, आहार संज्ञा, यहां मुंह मारा वहां ढूंढ रहे हैं, यहां कर रहे, उस नाली में घुस रहे, चार दाने के लिए कहां कहां नहीं, दिन भर प्रयत्न चलता रहता है जब तक सुबह से लेकर के शाम तक, और कोई उनको खबर है किसी चीज की? बड़ी प्रबल ये संज्ञा है चारों संज्ञाओं में से आहार संज्ञा, और उसी आहार संज्ञा से उत्पन्न होने वाली आकुलता को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे कि अगर जी कमती हो जावे तो बहुत समय मिल जाएगा अपने आत्म साधना के लिए। ये विषयाशक्ति बढ़ाने वाली आकुलता है, ये जो भूख प्यास की है सो भूख तो मिट जाती भैया दो रोटी से, वो प्यास मिल जा मिट जाती पानी से, मनो ये भूख प्यास की वेदना बढ़ करके इतनी बढ़ जाती है कि फिर संसार का पूरा पसारा फैल जाता है इसी के पीछे और कुछ नहीं। जाची चाने का के तपन के चटक मटक की चीजें जाने, हाँ अब और तो फिर शुरू हो जाता उसमें, फिर तो पांच इंद्रिय और मन के विषय हो आ जाएंगे और आकुलता बढ़ती जरा सी उस भूख प्यास के पीछे। और अगर उसको हमने जीत लिया तो फिर देखिएगा उसी को जीतने के लिए चार पर्व के दिन निश्चित कर दिए कि दो अष्टमी दो चतुर्दशी इनमें हम साधना करें, उपवास की साधना करें, एक आसन पूर्वक उपवास की साधना करें। उपवास की परिभाषाएं एक नहीं है, तीन परिभाषाएं हैं, तीनों एक साथ साधनी चाहिए। चारों प्रकार के भोजन का त्याग, चारों प्रकार की कषायों की मंदता और उपवासे अपने आत्मा के निकट रहने की अवस्था, ये है उपवास, जिसमें हम चौके में नहीं जाते, भोजन पानी के पास नहीं जाते, अपने पास रहते हैं। सो चार प्रकार के आहार का त्याग हुआ, जिसमें हम क्रोध मान माया लोभ के निकट नहीं जाते, हम उससे बच करके अपने ही निकट बने रहते हैं, तो हो गया उपवास। और अपन लोग को अभ्यास है कि चारों प्रकार का आहार भर छोड़ दिया, बाकी तो चार कषाय करत रहो और आत्मा की तो खबर ले वही ने, दुनिया भर के प्रपंच में लगे रहो, बस अकेले चार प्रकार के आहार का त्याग है। यदि इसका नाम उपवास नहीं, ये तो लंघन कहलाती। ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, नेता वगैरह तो यही करते, हंगर स्ट्राइक, उनने कर ले उसा भूख हड़ताल कर दी। तो भूख हड़ताल से क्या होने वाला, आत्मा का कल्याण थोड़ू होने वाला, विषय कषाय की पूर्ति खिलाने की जाती। सो विषय कषाय की पूर्ति खिलाने करोगे तो वो आत्म साधना नहीं कहलाएगी, साधना तो वो कहलाएगी जिसमें अपने आत्म कल्याण की भावना है, कर्मों की निर्जरा की भावना है, तब कषायों की मंदता और आत्मा की निकटता का अनुभव जिसमें होवे वो वास की प्रक्रिया है। सो गृहस्थ भी अपनी घर गृहस्थी के प्रपंच में रहते हुए भी और ऐसा अभ्यास करे तो उसके जीवन में बेहतर बनने के लिए और कोई ना कोई मार्ग सूझेगा उसके लिए। चार दिन भी, वैसे तो एक घड़ी भी पर्याप्त है, अपन इस चीज को भी बहुत बार विचार कर चुके कि अगर एक घड़ी भी, जितनी घड़ियां हैं एक घड़ी 24 मिनट की होती भैया, सो 60 घड़ी का दिन होता, एक घंटे में माने 48 मिनट एक एक मुहूर्त में, तो 30 मुहूर्त का होता 24 घंटे, तो 60 घड़ी होती हैं, उसमें से एक घड़ी भी अगर ठीक हो जावे तो बाकी सब घड़ियां अच्छी हो जाती। वो एक घड़ी कौन सी? यही पर्व के दिन में, और हम शांति पूर्वक सुबह दोपहर शाम ही नहीं पूरे दिन, अभी तो सिर्फ सुबह दोपहर शाम समता की साधना करते थे, अब तो पूरे दिन करेंगे। ऐसा अगर अभ्यास करें, उसके साथ में जुड़ा हुआ है स्वाध्याय, धर्मामृतम शत्रशना श्रवणाभ्याम पाएत अन्यान्वा। अब भूख प्यास की वेदना तो नहीं है, लेकिन कुछ ग्रहण करूं, किस चीज का पान करूं, तो धर्मामृतम शत्रशना, अत्यंत उत्साह पूर्वक, अत्यंत उमंग के साथ, अत्यंत ललक पूर्वक ग्रहण करें। तो क्या चीज ग्रहण करें? धर्मामृत का पान करें, और अकेले नहीं, अन्यान्वा, दूसरे को भी धर्मामृत का पान कराएं, और इस तरह अपने पर्व के दिन को सार्थक करें। उपवास ऐसे व्यतीत करें, स्वाध्याय स्वयं करें, और दूसरे जीवों के लिए भी धर्म की दो बातें सुना करके उनके लिए भी मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने। घर के लोगों को ही बिठाल करके, बहुत कठिन है, अपने पास पड़ोस के लोगों को बिठाल करके कि आओ भाई बैठो, अपन बैठे हो चार बातें धर्म की करें। ये तो संसार चलता रहता है ऐसे ही, तुम 24 घंटे और 365 दिन में लगे रहो, सो कोनो को नहीं कह बारो कि भैया आप बहुत होगा चलो ठहरो अब तक, नहीं जी, तो अपन को ही ठहर जाओ, सो ठहर जाओ, वरना तो ये लंबी दौड़ है अंतहीन, सो दौड़ते रहो सुबह से शाम तक और पूरे जीवन भर। तो ऐसा समय निकाल करके और स्वाध्याय करता है, ज्ञान और ध्यान में उसका समय व्यतीत हो, इसलिए किसी भी सांसारिक कार्यों में नहीं उलझेगा उस दिन के बाद, जो उपवास है सो और चीजें विस्तार लो, नहीं कोई सांसारिक प्रपंच नहीं करूंगा, सिर्फ अपना धर्म ध्यान करूंगा। ध्यान अध्ययन मनन चिंतन जो भी है अपन की जितनी सामर्थ्य है वो करेंगे, वरना तो चिंता और असंतोष ये दोनों चीजें गृहस्थ के पल्ले में आई हैं, और उससे वो बच ही नहीं पाता है। बताइए आप कौन बच पाता है? भविष्य की चिंता है और वर्तमान में जो नहीं मिलो सो को असंतोष है, और अतीत के बारे में, अतीत तो गुजर गया, अब का भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं कि अब का हुई, और वर्तमान में जो नहीं मिला उसका भारी असंतोष, जो मिला वो दिखता नहीं है, जो नहीं मिला है वो ही दिखता है, जी आंखें उसी के लिए बनी हैं, जी आंखें बाहर देखने के लिए बनी भैया, जी भीतर नहीं देख पाऊ, जी तो जब बंद हो जावे सो दिखात भीतर, तो जी बाहर जहां खुली तो बाहर का दिखता, और बाहर भी कौन सा, जो मिला वो नहीं, जो नहीं मिला वो ही दिखता, जी नहीं मिला बने असंतोष बना रहता 24 घंटे, उस चिंता और असंतोष वो ही अगर देखा जाए तो उपलब्धि है गृहस्थ की, और कछु उपलब्धि नहीं है। गृहस्थ से पूछो जाओ कि का मिलो तुम्हें पूरी जिंदगी में, का मिलो, कह चिंता मिली और असंतोष मिलो, और का मिलो, कछु नहीं मिलो। अगर ईमानदारी से पूछा जाए और सच्ची जवाब देवे वो, तो बाकी उपलब्धियों के नाम पर कुछ गिनाने लायक नहीं है अगर देखा जाए। एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी था, सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था, 8:30 बजे ऑफिस शुरू होता था, तो काम करने वाले तो 8:30 से 10 मिनट लेट आएंगे, लेकिन वो तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता ऑफिस में, और ऑफिस बंद होता था 5 से 5:30 बजे, तो वो 6 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता था, सब चले जाते थे नौकर चाकर, उसके बाद भी काम में लगा रहता, इतना और इतना धन संपत्ति उसने कमाई, और जीवन का अंत जब निकट आया तो बड़ा व्यथित। अब उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, मैनेजर था, तो उसने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, आपने इतना धन पैसा कमाया अरबों से, ये तो अबे 10 ही अरब भाई, अब बताओ आप। बढ़ करके हमें बड़ी हंसी आई कि हमने जी सोची थी कि जीवन में मरने से पहले 100 अरब छोड़ के जी हैं, अबे तो 10 ही हो पाए, मर भी को टेम आ गो। और फिर जब थोड़ा उसका मन थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि चिंतित तो बहुत था। तो धीरे से अपने उस मैनेजर से पूछता है कि एक बात, बहुत दिन से, अब तो मेरे जीवन का अंत है, सबने जवाब दे दिया, डॉक्टर्स ने भी, मैं भी तैयार हूं कि अब तो जाना ही है, पर एक बात तुमसे पूछनी है। तुम तो हमारे इतने निकट रहे, सारा काम तुम्हारे हाथ में ही रहा, मैं तो मालिक जरूर रहा लेकिन करते तो तुम रहे। अगर कभी परमात्मा से मिलना हो और परमात्मा तुमसे पूछे कि तुम धनपति बनना पसंद करोगे कि धनपति का मैनेजर बनना पसंद करोगे, तो बताओ तुम क्या कहोगे उससे? तो उस धनपति से मरते समय उसने यही कहा हाथ जोड़ करके, तो हमें तो परमात्मा मिलेगा, तो हम तो कहेंगे कि धनपति भूल के नहीं बनाना, वो कि मैनेजर बने रहे इतना ही बहुत, क्योंकि आप उसके मालिक हो करके चिंता और असंतोष में डूबे रहे, आपने और कुछ भी प्राप्त नहीं किया इस पूरे जीवन में। भले ही कहलाए आप धनपति, मुझे ऐसा धनपति नहीं बनना जो कि चिंता और असंतोष ही कमाए। ये संपत्ति अकेले कमाने से क्या होता, वास्तव में कमाई वो है जिसमें हमने संतोष कमाया, जिसमें हमने शांति कमाई, जिसमें हमने निराकुलता कमाई हो। तो घर गृहस्थी में भी अगर कोई चीज कमाएं तो ये चीजें कमाएं, कोशिश करें हम कि उस सब प्रपंच के बीच भी मेरी शांति, मेरा आत्म संतोष, मेरा आत्म सुख, उससे मैं वंचित ना रह जाऊं। बाकी सब चीजों से वंचित रह भी जाऊं तो कोई ज्यादा मेरी हानि नहीं है, इन चीजों से वंचित रह करके और फिर यहां से विदा लेना पड़े तो ये ठीक नहीं है। ऐसा सब विचार करके और घर गृहस्थी में भी ये गृहस्थ और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए और प्रयत्न करे तो कर सकता और अपने जीवन को अच्छा बना सकता। भाई इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच बच कर गाफिल निद्रा में सोता हो,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता
हो, अर्थ निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की लड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो चढ़ती हो फूल झड़ियां,
बंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सावधानी क्या कोई हो जग को निधि जग की निधिया,
दिन रात लुटाया करते हो श्रम सम की अभिनश्वर मणिया,
निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति जाग के मूर्तिमान
शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
मिथ्या तम नास्विकों ज्ञान। ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो भानु शिव कानी है
समुद्र बेचान वेखो बंद वेदी दान वेखो स्वपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है
बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भव्य और यानी है
जहां तहां तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिनवानी है
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू
उदक चंदन तंदुलि पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलाक कै धरल मंगल दान रणाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महम्यज
ओम रीम श्री 108 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के संगस्त परम पूज्य मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमलों की पूजा अनर्पत प्राप्त है अर्घुम निर्वपामी स्वाहा।